शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शुपिता हमारा है, शुपिता हमारा है, ओ शुपिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद्रगमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी।
ओम शांति। आज का क्वेश्चन है 102। गांव वाले बच्चों को देख के बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्यों? और बाबा ने तो एक ही विशेषता बताई, लेकिन और तो शहर के लोग के भावना वाले नहीं होते। बाबा एक ही चीज लेते हैं, वो ज्ञान का विस्तार। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा कभी ये भी नहीं देखता है कि कौन कुमार है कौन कुमारी है, बाबा आत्माओं को देखते ज्ञान देते हैं। फिर बाबा क्यों कहता है कि गांव वाले बच्चों को देख खुश होते हैं? बाबा अलग अलग चीजों से बात वही करते हैं, लेकिन बहलाने के लिए बच्चों को, कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी खुश हो जाए। तो बाबा ने जो उत्तर बताए हैं कि गांव वाले क्या होते हैं, भोले भोले भाले होते हैं, गांव के बच्चे भोले भाले होते हैं। इसलिए बाबा की जो एक नाम है भोलानाथ, इसलिए बाबा को भोलानाथ कहते हैं, भोलों का भगवान। और ये वास्तविकता है कि अगर आज से, जब ये डिजिटल दुनिया नहीं थी, कुछ साल पीछे जाएं तो हर चीज देखो कितनी, जब ये टॉपिक मिला तो हम अपने पुराने उसमें चले गए कि जहां खेत थे वो गांव से होके गांव ही में थे, तो करीबन 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे हम लोग। और जब जाते थे तो क्या है, नदी को इतना पार करके जाते थे, बहुत डर भी लगता था, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, तो पानी से हमको बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी जाते थे। कभी कभी इतने पानी होता था और नदी पार करके जाते थे, और 7 किलोमीटर जाना पैदल। उस समय कोई साधन नहीं था, रोड भी नहीं था, पूरा मेड़ होती ना गाँव में, पूरी मिट्टी की, चाहे बरसात हो ठंड हो, कभी कभी खेत में भी रोकना पड़ता था, कोई गद्दे वद्दे का बिस्तर नहीं होता था, घास को वो कर लो और वहीं सो जाओ। रात को जानवर आ रहे, आवाज आ रही, नहीं नहीं बहुत सारी चीजें होती थी उस समय। जब उस दौर में थे तो उस दौर का आनंद नहीं ले पाए, लेकिन जब इस दुनिया आगे, जब टेक्नोलॉजी को, बहुत सारी चीजों को इस समय देख लिया, तब वो उन स्मृति को स्मृति में लाते हैं तो कितना आनंद आता है ना। वो जब कोई भंडारा होता था तो कैसे गोबर के कंडे से जब बना के साल सब लोग खेत में भंडारा करते थे, खाते थे, क्या आनंद था। लेकिन उस समय वही चीज बोरियत लगती थी, क्या कर रहे है ना। लेकिन बाद में देखो स्मृति कितनी गोल्डन हो जाती है। तो वो चीजें जब उस दिन से टॉपिक मिला और गांव शब्द पढ़ा, तब वही चीजें स्मृति में आई कि बाबा कैसे, जैसे भोलानाथ बाबा है वैसे ही बच्चे भी भोले हैं, इसलिए बाप दादा विशेष उनको देख के खुश होते हैं, है ना। और गांव वालों को बाबा से कितना प्यार होता है, ऐसे ही बाबा को भी प्यार है गांव वाले बच्चों से। एक्चुअल में बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि गांव के बच्चे जो होते हैं वो भावना वाले होते हैं, भोले होते हैं। मतलब चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जो भी बच्चा भावना वाला है, जो भी बच्चा भोला है, इनोसेंट है, उसको बाबा प्यार करते हैं। और भले गांव में रह रहे, गांव अब ऐसा तो नहीं है कि गांव में सारे लोग भोले हों, शैतान भी होते हैं बड़े, मतलब गांव में बड़े दुष्ट टाइप के लोग भी होते हैं जो सताते हैं लोगों को, लीडर होते हैं जो गांव में होता है, ग्राम पंचायत एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें कौन रहता है, सरपंच। गांव में आज भी देखा जाए तो तरक्की नहीं होती, उतनी तरक्की नहीं हुई, लेकिन गांव से लोग पढ़ लिख करके जो निकले शहर में गए, तब उनने खुद की तरक्की की गांव वाले लोग। बाकी जो उधर का लीडर होता है वो पूरा पैसा जो भी आता है गवर्नमेंट से, जो भी कुछ आता है ना, वो पूरा अकेला हड़प कर लेता है, ऐसा देखा। और अभी भी चल रहा है वर्तमान। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा, इसलिए गांव में कहते हैं कि आजकल लोग खाना तो कम खाते हैं, सड़क खा गए है ना, जो भी स्कीमें आई वो खा गए है ना, राशन खा गए, राशन खा गए सा। और उनको आगे ऐसा भी रहता है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, स्कूल का पैसा खा गए है ना, स्कूल में जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा आया था वो भी खा गए, मैदान खा गए, ग्राउंड बनना था, बहुत सारी चीजें खा गए। तो ऐसा है कि एक बार एक बच्चा सिक्का खा लेता है, सिक्का खा लेता है, तो उसके ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो एक घंटा लग जाता है ऑपरेशन करने में। तो ऑपरेशन करने में सिक्का निकल जाता है, लेकिन जिन लोगों ने, कहते हैं कि गांव के लोग बुद्धिमान नहीं होते है ना, बुद्धिमान नहीं होते, बिल्कुल इनोसेंट होते। आप जो बड़ा व्यक्ति कह दे ना उनको, पंच की बात सिर माथे पे रख लेते हैं वो दूसरे हिसाब से, कि बड़ों की बात वो स्वीकार कर लेते हैं बहुत आसानी से। जैसा व्यक्ति समझदार जो उस एरिया का रहेगा, जैसा वो बताएगा ना वैसा स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये सही है, बिना कुछ जांचे और परखे। ऐसे ही बच्चे, भगवान ने कहा और कई ऐसी आत्माएं हैं जैसे बाबा ने जो कुछ कहा बिना कुछ किए, बिना तर्क किए, बिना कुछ किए, बाबा की बातों को स्वीकार कर ली, कोई तर्क नहीं किए कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है ना। तो सिक्का जब वो खा गया तो क्या हुआ कि ऑपरेशन के लिए, तो बुद्धिमान की बात कि गांव के लोग बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन आज अगर देखे जाए वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट कर्म कौन कर रहा है, बुद्धिमान कर रहा है या बुद्धू व्यक्ति कर रहा है? करोड़ों को घपला क्या गांव के व्यक्ति करते हैं, अरबों के घपले जो हो रहे हैं बड़े बड़े घपले, वो कौन करता है? बुद्धिशाली। जैसे ही इस दुनिया में बुद्धिमान लोग बढ़ रहे हैं वैसे ही भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा, क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तो जब एक सिक्के को निकालने के लिए 1 घंटे ऑपरेशन हुआ, तो सोचो जो लोग सड़क खा गए, सड़क का पैसा खा गए, क्या क्या नहीं खा गए, उनका ऑपरेशन करने के लिए भगवान कितना टाइम लगा, है ना। तो ये तो ऑपरेशन ही चल रहा है ब्राह्मण आत्माओं का, तो वो तो अपने ऊपर है, अपन सोचते हैं कि कब होगा कब होगा। तो इसमें कुछ बातें हैं, 102 नंबर का प्रश्न है 102, तो बाबा भोलेनाथ बाबा है और बच्चे भी क्या हैं, भोले। तो अब हमें इन में दो बातें हैं, एक तो भोलेनाथ के भोले बच्चे अधिकारी बच्चे, है ना, भोलेनाथ के अधिकारी भोले बच्चे, और एक है भोलानाथ बाप के भूलानाथ बच्चे, भिकारी बच्चे। एक है अधिकारी बच्चे और दूसरे भिकारी बच्चे। तो पहले अधिकारी बच्चे में दो पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि जो अधिकारी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या विशेषताएं होंगे, आज्ञाकारी, नशे में रहेंगे और भरपूर होंगे और कल कुछ बाबा ने प्रश्न में कुछ अच्छी बातें बताई थी, कल पांच एक बातें बताई थी, है ना, जो भगवान के ब्राह्मण बच्चे हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, उस बताया था चेहरा कैसा नहीं होगा उनका, है ना, शक्ल कैसी होगी, मुर्दे जैसी नहीं होगी शक्ल उनकी, देख के लगे कि 12 तो बजे हैं, भले घड़ी में कितने ही बजे। तो एक बार एक सन्यासी क्या है, रास्ते से जा रहा होता है अपने चेले के साथ, दोनों जा रहे होते हैं, तो एक पागल सा व्यक्ति होता है, सन्यासी लोग कुंभ के मेले से लौटते हैं रास्ते में, तो टाइम घड़ी तो पहनते नहीं सन्यासी, तो पूछ लेते हैं वो उस व्यक्ति से कि समय कितना हो गया। तो वो व्यक्ति जो होता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो उससे पूछ लेते हैं समय क्या होगा, वो निकालता है एक डंडा और मारता है सिर पे, बोला 1 बज गया। सन्यासी नाचने लगता है, उसका चेला बहुत दुखी होता है, बोले डंडा गा के क्या हो गया इनको, नाचने क्यों लगी। फिर वो जब पागल निकल जाता है, सन्यासी आगे पहुंचता है, तो वो उसका चेला है फिर से पूछता है कि जो आपको एक डंडा, आपने उससे समय पूछा, उसने 1 डंडा मार के आपको समय बताया और आप खुश हो गए क्यों, बोले अच्छा हुआ 1 घंटे पहले नहीं पूछा था। तो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बाबा ने सिर्फ आके हमारी ना हमारे संबंधी बदले, ना क्या बदला, व्यक्ति बदला, ना वस्तु बदली, ना कुछ बदला, सिर्फ हमारे क्या दृष्टिकोण बदल दिया बाबा ने। बाबा जो ज्ञान देता है वो सिर्फ परिवर्तन कर देता है, हर चीज जो आपके सामने दिख रही बाबा ने हर चीज के विषय में बोला है, है ना, हर चीज को ज्ञान से कन्वर्ट कर दिया बाबा ने। आज के समय में अगर देखें, बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए लाइट सेट है, हवा खाने के लिए पंखा सेट है, है ना, कंप्यूटर सेट है, बोलने के लिए के माइक सेट है, है ना, रिकॉर्डिंग करने के लिए भाजी सेट है। तो सब लोग अपनी अपनी जगह सेट है, हर ऑफिस में कहो तो एसी सेट है ठंडी हवा खाने के लिए, कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी माइंड अपसेट है। सारी चीजें तो सेट हैं, ज्ञान भी सेट बुद्धि में नहीं हो पाता कभी कभी, जिसके कारण आप सेट होते हैं। बाबा कहता ना, आज का बाबा ने श्रीमत का क्या है वरदान में, श्रीमत का कांटा, 2 पलरे बताए हैं, 1 कांटा बताया बाबा ने। कैसा बाबा, देखो एग्जाम्पल जो मिसाइल देता है बाबा, वो है ज्ञान वही, लेकिन नए नए तरीके से देता है। तो समय और शक्तियों के पलड़े क्या नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, उसके लिए क्या बताया, कौन सा कांटा बीच में होना चाहिए, श्रीमत का, श्रीमत का कांटा बीच में हो। और एक बार बाबा ने कभी एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे जो पलरा भारी होता है वो क्या सर नीचे रहता है, और जो हल्का होता है मतलब वो ऊपर होता है। तो उसमें बाबा ने अलग एग्जाम्पल ये दिया था कि जो पुरानी दुनिया की बातें पुरानी बातों को रखे रहते हैं वो उनकी ना चढ़ती कला नहीं होती, उतरती कला होती है, मतलब नीचे आ रहे हैं वजन में बोझल हैं। और जो सब चीजें छोड़ते जाते हैं, जो जमीन छोड़ता जाता है वो कैसे हल्का होता जाता है, जो हल्का होता है वो क्या होता है ऊपर होता है। तो बाबा ने जो विशेषताएं बताई तो पहले वो भावना वाले होंगे, है ना, भावना उनकी सेवा भाव जो होगा पूरा भावना युक्त होगा, ना नाम के लिए ना मान के लिए ना शाम के लिए कुछ भी नहीं, इच्छा मात्र में विद्या होंगे वो। संकल्प में भी उनको कभी मान का कहो पद पोजीशन का नहीं हो सकता। और वास्तव में ऐसे जो भावना वाले बच्चे होंगे ना वो उनको बाबा पहली सारी चीजें दिखा देगा। पहले ऐसा नहीं कि वो जन्म से ही हर चीज से संतुष्ट हो, लेकिन नहीं वो उस दुनिया में सारी चीजें करके फिर, और वास्तव में व्यक्ति संतुष्ट जब व्यक्ति के पास चीजें नहीं होती तब संतुष्ट नहीं हो सकता। वो जब प्राप्ति कर लेता है उनकी वास्तविकता जब जान लेता है वो, तब समझ में आता है कि भगवान जो कहता है वो राइट है। तो बाबा जो कहता है ना तो पहले सेवा भाव भावना से होनी चाहिए। तो एक बार जब हृदय पुष्पा दादी थी तो बाबा सबको इधर ही शिफ्ट हुए थे नए नए कराची से आके, तो बाबा सबको सेवा बांट रहे थे, तो दादी सबको बाहर भेज रहे थे। तो दादी जो दादी थी वो बस क्लास में नहीं जाती थी, तो बाबा ने एक बार क्लास में बोल दिया, कुछ बच्चे तो हमारे अच्छे बच्चे हैं जो खुद फूल बन गए तपस्या की बांटने जा रहे बाहर, और कुछ बर्थ नॉट पेनी बने हैं, तो फिर भी दादी नहीं जाती थी बाबा के सामने। तो मम्मा को एक बार बाबा ने बोला कि दादी को समझाओ, तो मम्मा शाम के समय वॉकिंग में जाती थी इधर तक नरादरा पॉइंट तक, तो यहां से जब जा रहे थे तो दादी मिल गई, तो उनको भी मम्मा ने दादी को साथ ले गई। वैसे मम्मा अकेली जाते थे घूमने, लेकिन उस दिन साथ में ले गई दादी को। दादी को समझाया कि देखो बाबा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है। बोली हम मुरली हम कागज में क्यों पढ़े जब बाबा आया है, दादी ने ऐसा जवाब दिया मम्मा को, है ना, हम बाबा छोड़ के क्यों जाएं इतने शेष स्थान में, और उधर जाके हम कागज में पढ़े वो भी भाषा ज्ञान दूसरे दिन, है ना, आज इधर रह के हम बाबा सम्मुख मिलेंगे, बाबा का जो प्यार है वो अनुभव कर। लेकिन मम्मा ने समझाया उनको, तो मन को मार के समझ के आ गए, लेकिन बाबा के सामने ये कहने नहीं गए कि हम तैयार हैं जाने के लिए। तो मम्मा ने बुलाया उनको, बोले बाबा बच्ची तैयार है, आप जहां भेजेंगे वहां जाएंगी। तो उनने भी दादी से पूछा बाबा ने कि जाओगी, तो हां कर दिया मन को मार के जैसा भी। तो जब दादी को भेजा तो दादी पहली बार इधर से निकली और बेंगलोर गई। पहले क्या होता था ना, कुछ साधन थे ना पैसा था, यज्ञ में सारी चीजें थी, फिर भी दादी चली गई उधर। जहां दादी कहते हैं कि जहां दादी रही वो छोटा सा कमरा था बहुत, ना रहने उधर ही रहती थी, उधर ही खाना बनाती थी, उधर ही सोती थी, वही एक ही रूम सब कुछ था। तो जब फिर कुछ समय गुजर गया, दादी कभी भूखी भी रहती थी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, सारी चीजें थी। तो जब समय गुजर गया तो बाबा को लगा कि बच्ची तकलीफ में है, तो मम्मा को भेजा। तो दादी ने सोचा कि मम्मा जब आने वाली हैं तो उनके लिए तो क्या व्यवस्था चाहिए, रहने के लिए, सबके लिए, खाने के लिए। तो दादी योग में बैठ गई, और जब दादी योग में बैठी तो दादी को बहुत टचिंग हो कि बच्चे इस स्थान पे फलाने फलाने स्थान पे फलाने सेठ के पास जाओ, वो जगदम्बा का भक्त था। तो उसको दादी वहां वहां गई और वैसी दुकान थी और उसको ज्ञान समझाया कि जगदम्बा आने वाली है, तो उसको भी विश्वास हो गया। दादी ने इतनी अथॉरिटी और नशे से इतनी स्पष्ट समझाया कि उसको नशा आ गया। वो दादी को कार में बिठाया और बोले जगदम्बा आने वाली है तो हमको बड़ा स्थान चाहिए, थोड़ा कुछ दिन रहेंगी, रहने के लिए भी स्थान चाहिए और लोग आएंगे उनसे मिलने उसके लिए भी स्थान चाहिए। तो उसका जो था नया नया धर्मशाला बना था, तो दादी को गाड़ी में बिठाया ले गया धर्मशाला में, रहने की भी व्यवस्था मम्मा की और फिर राशन भी सारा भेजा, सब कुछ किया उसने। फिर दादी को लगा कि मम्मा आएगी तो फूल भी चाहिए, तो तभी किसी को दादी ने कोर्स कराया था कि फूल माली था वो, तो उसने फूल ला के दिए। सारा प्रोग्राम हुआ, मम्मा आई, सब कुछ हुआ, सुनाया, मिलना मिलाना, कार्ड भी छपवाए दादी, अब दादी के पास कोई पैसे नहीं थे और कार्ड भी छपवाने थे लोगों को इनविटेशन, तो वो एक प्रिंटिंग प्रेस के पास गई और बोला, इंग्लिश में बोला दादी ने, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, बाबा ने ऐसा टच कराया कि दादी ने इंग्लिश में बोला कि मम्मा आ रही हैं, तो उनको कार्ड, तो उसने कार्ड भी छाप के दे दिए। तो ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि कैसे जब हम हाजीब का बस पाठ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं इसमें, तो सारी विशेषताएं सारी मदद वही करता है, माध्यम बस तुमको बनना है, हाँ बस करना है और हर एक विशेषता वो भर देगा। तो मम्मा ने प्रोग्राम किए, सारी चीजें किए, लेकिन मम्मा की एक बात हमेशा दादी को कहती थी और दादी टालती थी कि जहां बाबा का सेंटर है वो स्थान तो आपने दिखाते ही नहीं हमको। जब लास्ट दिन आ गया समय जाने का, तो मम्मा ने बहुत फोर्स से बोला कि अब वो तो हमें देखना है बाबा का स्थान कहाँ है, कहाँ आप रहते हो, वहां जाना है हमको। तो दादी हमेशा संकोच में रहती थी कि वो स्थान कैसे दिखाएं, फिर भी मम्मा का आदेश माना, दादी ले गई और मम्मा ने देख के दादी को बोला। इसके बाद जो बोला, जो शब्द हैं बहुत कड़े शब्द हैं, मम्मा ने दादी को बोला कि देखो बाबा ने आपको राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाला और आप ऐसे रह रहे हो, इसलिए बाबा को टच हुआ कि बच्ची परेशानी में, और बाबा ने स्पेशल मम्मा को मतलब हमको भेजा कि दादी को लेके आओ। दादी के शब्द बड़े उस समय, अगर आज सुने तो वर्तमान स्थिति में बहुत नशे दिलाने वाले हैं। तो दादी ने कुछ समय साइलेंस रही दादी, एक समय था कि दादी जा नहीं रही थी इधर से, है ना, और जब बाबा की आज्ञा होगी तो गई। तो जब मम्मा ने ऐसा बोला तो दादी ने क्या बोला, दादी ने बोला कि आप मम्मा जाओ और बाबा से कहना हम तो आपके साथ नहीं जाएंगे, जो भी है जैसी भी परिस्थिति है काट लेंगे, मरेंगे मिटेंगे यहीं रहेंगे, लेकिन जब तक बच्ची मैं गुलदस्ता तैयार करके नहीं लाऊंगी ना बाबा के पास, तब तक यहीं रहूंगी, क्योंकि हम कमांडर के हुक्म से आए हैं और मैं कायर सिपाही नहीं हूं, कायर सिपाही नहीं हूं मैं। सोचो बाबा कहता है अननोन वॉरियर्स तुम हो, स्पिरिचुअल आर्मी हो, है ना। तो ये भूमि वास्तव में वैसी आत्माओं ने तपस्या करके इस भूमि को तैयार किया है, वैसी भूमि की जो पूर्वज आत्मा है उस पूर्वज की तुम पालना लेने वाले संतान हो अलौकिक। और वर्तमान में इन अनुभव को सुन के कि हमारे रोंगटे खड़े नहीं होने चाहिए कि उनके हम वंशज हैं। एक जो हमने गांव में देखा कि कई लोगों के लौकिक दादा परदादा आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, जिनकी स्मृतियां बनी हैं गांव में, हर गांव में जहां घूमे 197 मतलब छोटे छोटे ग्राम पंचायत थे तालुका में, जिस तालुका में हम रहते थे उधर पे 197 एरिया था, शायद उस डिस्ट्रिक्ट का वो सबसे बड़ा तालुका था, तहसील था, जिसमें इतने सारे ग्रामीण क्षेत्र थे। और करीबन 2 लग गए हमको 197 एरिया में घूमने में। टेलीकॉम का काम था तो कभी कभी इंफेक्शन, बहुत सारी चीजें के लिए जाना पड़ता था। तो हर एक गांव में कोई ना कोई स्मृति होती थी। अभी जो बम ब्लास्ट हुआ था शायद याद हो, जिसमें 30 लोग मारे गए थे लास्ट समय, जम्मू के आसपास कोई गांव था ओखला, अभी हाँ पुलवामा हमला हुआ था। हाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हुए, इसमें से एक वहां का भी था, गांव का था। जहां भी शहीद होते तो उनके जो लौकिक है ना, वंशज, नाती पोत्रे, उनको भी नशा रहता है कि हमारे पूर्वज ये काम करके गए, भले कुछ नहीं होगा उनके घर में आज के समय में, ना खाने को होगा ना कुछ, फिर भी उनको नशा बहुत हाई लेवल का होता है कि उनके पूर्वज ने कुछ करके गए। तो हमें, हमारे पूर्वज क्या करके गए, हमें उस चीज का नशा होने चाहिए, है ना, कि वो कैसे हड्डी हड्डी सेवा की, क्या भावना थी उनकी सेवा के प्रति, क्या दादियां, अगर दादियों के अनुभव जब देखते हैं तो वो इतनी नौकर चाकर थे जब उन लौकिक में थे कि उनको कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब यज्ञ में आए तो कैसा बाबा ने कराया उनसे त्याग तपस्या। तो एक 29 फरवरी 95 की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा कि आदि में जो हुआ है वो अंत में भी होगा, आदि में जो हुआ है वो अंत में भी होगा। आदि में क्या हुआ, तुमको रास्ता ही ठाट बाट से भी रहे हो, राजकुमार राजकुमारियों की तरह भी रहे हो, तो बैगरी पार्ट का भी अनुभव हुआ ना। ऐसा समय तुम लोगों ने देखा है, लेकिन अब समय वो भी आगे आएगा कि जब सारे साधन समाप्त हो जाएंगे और साधना ही काम आएगी। तो वर्तमान समय में देख ही रहे कि धीरे धीरे साधन क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, है ना। और गांव में जब जो होता था, गांव में क्या होता था, उस समय साधन नहीं थे उतने, लेकिन हर चीज के पीछे साधना थी, इसलिए व्यक्ति तंदुरुस्त था। दिन भर वो फिजिकल व्यस्त रहता था, धूप लेता था, सारी चीजें, गांव में खेत में काम करता था। और पहले क्या कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा, लोग धरत पर ये धर्म न छोड़िए इस भावना पर रहते थे, वसुदेव कुटुंबकम इस भावना पर रहते थे। कोई प्रोग्राम होता था, कोई कुछ कार्यक्रम होता था, तो ये टेंट तंबू ये सब नहीं चलता था। पहले लोग अपने घर से सारे बर्तन, जैसे कोई प्रोग्राम है, भंडारा है, तो सारे लोग अपने अपने घर से ले जाते थे सामान, है ना। जैसे ही व्यक्ति का दिमाग बढ़ता गया, उसने अपनी क्या है तरक्की करता गया, फिर घरों का साइज तो बढ़ता गया अभी, लेकिन दिलों का साइज क्या होता गया, घटता गया, भावना घटती गई, और जिसके कारण हार्ट अटैक आने लगे, ब्लॉकेज होने लगे, छोटे हो गए। बुद्धि तो क्या किया, बुद्धि तो विकसित हुई, लेकिन जो दिल छोटा हो गया और जो वैल्यू है वो कम होते गए। तो गांव में जो था, तो पहले ऐसा होता था कि साधन नहीं थे, लेकिन साधना बहुत थी उनके जीवन में, इसलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, तंदुरुस्त थे, डाइजेशन उनका ठीक था। आज सबसे बड़ी बीमारी है डाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेशन के कारण जैसे ही व्यक्ति दिमाग से विस्तार कर रहा है, दिमाग की बीमारियां होना शुरू हो गई। पहले इतनी दिमाग की बीमारियां नहीं थी, नाम भी नहीं, हमने खुद लौकिक में 2012 में हमने डिप्रेशन शब्द सुना, डिप्रेशन शब्द हमने 2012 में सुना पहली बार, गांव में कभी डिप्रेशन शब्द सुना ही नहीं हमने, 18 वर्ष गांव में गुजारे, कभी डिप्रेशन शब्द सुना ही नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है। और आज देखो मानसिक बीमारी कितनी हो गई लोगों को, बाहर वालों को तो छोड़ो, ब्राह्मणों को भी हो गई, रात को नींद नहीं आना,
विश्व
स्पिरिचुअल डिप्रेशन, तो स्पिरिचुअल मेडिसिन भी चाहिए। तो पहली बात क्या थी, भावना वाले। तो दादी ने कैसे भावना रखी, जब हम भावना का, बाबा कहता है ना भावना का भाड़ा मिलता है, तो वो लेकिन पहले जैसे भाई जी ने सुनाया था कि वो कुमार पहले मिट्टी खोदता है, फिर क्या करता है, पकाता है ना, और जब लेने वाला आता है तो उसको ठोक बजा के देखता है एक छोटे से मटके को। तुम्हें तो विश्व की राजशाही देनी है, बाबा को बादशाही देनी है, तुमको बजाएगा कैसे बजाएगा बाबा, है बजाएगा क्या, ऊपर से उठा के और पटकेगा, उठाएगा फिर। लेकिन बाबा पहली बात भावना, दूसरा निस्वार्थ भाव। जो बाबा के अधिकारी बच्चे होंगे उनमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, संकल्प मात्र भी स्वार्थ नहीं होगा, भले उस दुनिया में जैसे भी रहे तब रहा हो जो भी, लेकिन इधर आने के बाद कुछ भी इच्छा नहीं होगी, ये हो जाए ये मिल जाए, जहां रहेगा जैसा रहेगा सिर्फ उसकी एक ही लगन होगी और आत्मा की एक ही प्यास है। अगर अंदर अंतर मन में गहराई में जाके देखो आप, जो भी ये चल रहा है ये सब उसको नहीं चाहिए आत्मा को, ये तो सिर्फ एक आपको खेलने कूदने के लिए बाबा ने वो दिया ताकि आपका क्या है चिंतन बुद्धि जिससे चलती रहे, ये सब नहीं चाहिए ना वीडियो नहीं। व्यक्ति क्या है अपनी जाल में अपनी रचना में फंस जाता है, वो ये मकड़ी का जाल बन जाता है ना, अपनी उलझनों में ही फंसा रहता है। एक राजा था वो बहुत परेशान था, शांत था, तो सन्यासी के पास गया राज सलाह लेने, बोले कि हम बहुत अशांत हैं। तो ठीक है, सन्यासी ने बोला ठीक है तुम अपनी जितनी दौलत है उसको बहुत अमूल्य रत्नों में कन्वर्ट करके ले आना मेरे पास एक पोटली में भर के। तो राजा ऐसे ही क्या करता है, अगले दिन जाता है एक पोटली में भर के हीरे जवाहरात लेके जाता है, बोले ये लो। तो पोटली लेता है और सन्यासी भाग जाता है भाग जाता है सन्यासी लेके उसको, राजा उसके पीछे पड़ जाता है, पूरी प्रजा को पूरे फोर्स को लगा देता है कि सन्यासी धोखेबाज निकला जिसके बाद राय सलाह लेने गए। तो उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद राजा को पोटली वापस मिलती है और राजा सुकून से रहता है, बोले अब मिली हमको शांति थोड़ा, बोले तो सन्यासी कहता है शांति तो पहले भी तुम्हारे पास थी है ना, अब नहीं थे, स्मृति का खेल, विस्मृति का खेल है, स्मृति विस्मृति का खेल है। एक्चुअल में हमारे पास जब कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है, सारी चीजें बिन कौड़ी बादशाह हो, लेकिन अपन को इच्छाएं उत्पन्न करके थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा वीडियो बन जाए, थोड़ा कुछ हो जाए। वीडियो जब बनाए तो एक भाई ने आके बोला कि उस दिन क्लास हुआ, एक भाई बोला आके कि तुम्हारी सबसे ज्यादा तो तुम्हारे वीडियो को बहुत लोगों ने देखा। तो अंदर से इच्छा हुई, थोड़ा रस भी मिला, जब कोई बोलता है तो यार ये तो बात अच्छी है, तो जाके फिर खुद भी देखे कि एक देखे इसका इस रीजन से कि कितने लोगों ने देखा, हम भी तो देखे, कोई सुना के गया कि बहुत लोगों ने देखा तुमको, तो देखा खोल के, फिर बार बार इच्छा होने लगी देखने की, अरे कितने लोगों ने देखा कितने, ये नहीं देखो, कभी कभी माया बड़ी सूक्ष्म मुझसे डालती है प्रभाव, हमें नहीं लगता कि हम माया के वशीभूत हो गए हैं है ना, बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है जब चिड़िया चौक गई खेत है ना, ऐसा होता है। तो वास्तव में फिर क्या देखना, क्या जो हो गया बीत गया बीत गया है ना, उसको क्या देखना, और लोग देखें चाहे नहीं देखें वो तो बात अलग है उनकी है। वास्तव में क्या हम यही करने आए थे, एक प्रश्न है सबसे, क्या जो जब बाबा के हम बने ब्राह्मण बने, क्या अभी हम वही कर रहे हैं जो करने आए थे, या जो कर रहे हैं वो करने आए थे? क्वेश्चन थोड़ा वो है, लेकिन समझने की बात यह है कि जो हम करने आए थे वो कर रहे हैं अभी, या जो कर रहे हैं वही करने आए थे? कई लोगों को देखा ब्राह्मण बनने के बाद यही बिजनेस शुरू कर दिया, बाहर जब हमने देखा ऐसे लोगों को बहुत देखा जो आए और गए हमारे सामने, आंखों के सामने, और आए भी तो स्वार्थ से, ऐसे नहीं आए थे। कुछ कंपनी में कोई सेल्समैन था तो वो अपन उनको बाहर तो मिलते नहीं थे बेचने वाले सामान, तो क्या है यहां देखते थे संगठन है ना, संगठन है तो आके नामधारी ब्राह्मण कहो बन गए और यहीं व्यापार शुरू कर दिया। ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, यहीं दुकानदारी। बाबा ने जबकि स्पष्ट मना किया कि आपसी में क्या नहीं करना है, लेन देन नहीं करना है, न धन का लेन देन हो और न ज्ञान के विरुद्ध कोई चर्चा हो। मीटिंग अपने कारोबार की चलने लगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने ब्राह्मण बने थे, दुनिया की सारी चीजें छोड़ के आए थे और यहीं दुनिया बसा ली है ना, बहुत सारी चीजें शुरुआत कर ली जो उस दुनिया में हमारे चीजें दबी हुई थी, और बहुत समय के बाद इधर प्रत्यक्ष होने लगती हैं, क्योंकि सारी चीजों से आत्मा क्या हो जाती है, रस। गांव में एक और चीज होती है, और गांव में कहो हर व्यक्ति के साथ होती है, जो चीज नहीं होती ना वो चीज हमको खींचती है, जो चीज होती है उसका हमें अनुभव भी नहीं होता। कई बार कितनी सारी कहानियां हैं इसके ऊपर के, जेब में हीरा पड़ा है और बाहर भिखारी के कपड़े पहन के घूम रहा है, बहुत सारी कहानियां हैं उसके। तो पहली बात ये थी निस्वार्थ भाव है ना, निस्वार्थ। लेकिन आज संबंधों में भी बहुत स्वार्थ हो गया, संबंधों में ऐसे स्वार्थ हो गया, बहुत स्वार्थ हो गया। व्यक्ति समय नहीं लगता उसको संबंध बदलने में है ना। तो एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, पत्नी ने अपने पति से पूछा कि जैसे मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। बोले तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा सोचो भी नहीं तुम। बोले पत्नी ने बोला सपोज करो, ऐसा हुआ नहीं लेकिन मर गए तो। तो पति ने मुख में उंगली रख दी, बोले बोलो भी नहीं। तो पत्नी अंदर अंदर बहुत खुश हुई, अरे हमारा पति हमको बहुत चाहता है ना, बहुत चाहता है हमको। तो फिर पत्नी ने, अब अंदर से तो रहती जिज्ञासा, फिर जाने कि सपोज करो मरे नहीं फिर भी। तो उसने बोला मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर पत्नी ने बोला क्या तुम फिर दूसरी शादी नहीं करोगे। तो पति बोला पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो कभी कभी हमें लगता है संबंध जो हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कभी कभी संबंध बड़े खतरनाक हो जाते हैं। हम भगवान को छोड़ के कहीं कहीं व्यक्ति में फंस जाते हैं, किसी के ज्ञान में फंस जाते हैं। सब माध्यम, और हमको सारे माध्यम जो भी ज्ञान भी है, सेवा भी है, धारणा भी है, वो सब छुड़ाने के लिए, ताकि हम बिजी रहें, लौकिकता में ना आए, अलौकिकता में जाएं। हमारी यात्रा कहाँ की है, एक गांव का व्यक्ति शहर गया, शहर वाले पूछा कहाँ से आए, तो उसने कहा फलाने गांव से आए। ठीक है, उस गांव का व्यक्ति अगली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया, उस व्यक्ति से पूछा कहाँ से आए हो, तो वो फलाने शहर से आए। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है क्या होता है, छोड़ता जाता है ना, छोड़ता जाता है। जब फिर वो फलाने दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे स्टेट गया, तो उससे पूछा कहां से आए हो, तो बोले फलाने स्टेट से आए, है ना। फिर एक देश से दूसरे देश गया तो बोले उस देश से आए। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है हर चीज में, तो क्या चीज होती है, बड़ा होता जाता है रूप और उसका छूटती जाती है पुराने। तो वो व्यक्ति क्या गया, दूसरे देश गया, तो बताया किस देश से आए। फिर वो व्यक्ति मंगल ग्रह पे चला गया है, तो उससे पूछा कहां से आए, तो बोले पृथ्वी लोक से आए। अब क्या है कि बाबा का ज्ञान डायरेक्ट हजम क्यों नहीं होता, कि बाबा ने डायरेक्ट पहले गांव खेड़े का एड्रेस नहीं बताया, डायरेक्ट कह दिया तुम परम धाम के हो, अब वो बात हजम नहीं होती। इसलिए हमारी बुद्धि विशाल नहीं होती। हम क्या करते हैं, कहते हैं कि जो अपना भला चाहता है वो है दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहता है वो है युधिष्ठिर। जो सब सर्व का भला चाहता है वो है कृष्ण। कृष्ण माना ब्रह्मा बाबा, बाबा माना बाप समान। तुमको क्या बनना है? बाप समान, तो सर्व का भला। तो ये है निस्वार्थ, निस्वार्थ हर चीज निस्वार्थ हो। जो गाली गले लगाने वाले को तो प्यार करना ही है। बाबा ने जो कहा ना कि प्यार क्यों करता है बाबा विशेष गांव वालों को, कि गांव जो उनको तो गले लगाने वालों को तो प्यार करना ही है, लेकिन गाली देने वालों को भी प्यार करना। और वो तब होगा जब हम कोई भी चीज में अटैच नहीं होंगे, चाहे नाम, क्योंकि बाबा कहता है ना कि प्रशंसा की मिठाई तो अच्छे से खा लेते हो, है ना, लेकिन गाली का गोबर खाने में बड़ी परेशानी होती है। तो अगर हम प्रशंसा जो है कि मेरे को ये लोग सुन रहे हैं, मैं अहंकार आ गया, अभिमान आ गया अंदर से, दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे हो, कोई छोटा है बड़ा है सब, है ना, रिगार्ड रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, अपनी को सब कुछ समझ रहे हैं, तो क्या है, अभिमान आ गया, है ना। और आपको थोड़ा सा कोई आगे सपोर्ट करके आगे बढ़ गए तो उनको भी भूल गए आप, है ना, मैं ही सब कुछ हूं। तो अगर वो चीज स्वीकार कर ली कि हाँ मैं सब कुछ हूं, तो फिर तुमको निंदा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ऐसा है। तो ये थी किन की बातें? अधिकारी बच्चों की बातें, है ना। तो दूसरे हैं अधिक भोलेनाथ बच्चे के भोले अधिकारी बच्चे, और फिर सेकंड है भोलेनाथ के भोलानाथ भिखारी बच्चे, जो बाबा को भूल गए। बाबा को बाबा ने कई बार कहा कि हाथ चलते चलते हाथ साथ छोड़ देते हैं, है ना, चलते चलते आके इस दुनिया, पुरानी दुनिया से तो आए इधर पे, लेकिन अपने लक्ष्य को ही भूल गए। भोलानाथ के भूले बच्चे कैसे चल रहे हैं लेकिन लक्ष्य को भूले हुए चल रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है हमारा? बाबा देखो कितना याद दिलाता है कि तस्वीरें लगा दो, चिपका दो दीवालों में, कल भी कहा था ना, लिख दो तुम, स्मृति में रहे। लक्ष्य हमारा हमेशा गूंजता रहे कि मैं जो करने आया वही कर रहा हूं, या कुछ और चीज में तो नहीं फंस गया, माया के उसमें तो नहीं फंस। तो तीन चीजें हमेशा विशेष ध्यान रखनी है लक्ष्य के लिए। एक तो मित्र, तीन चीजें अच्छी होनी चाहिए, मित्र, चित्र, चरित्र। बाबा ने देखो कितना अच्छी अच्छी बात है बाबा सुनाता है। बाबा बोले मित्र तुम्हारे सही हो, जैसे जो संगठन है, शुरू से अनुभव हमारा खुद का है कि जब से इधर मधुबन आए तभी से जैसे ही एंट्री की, तो शायद एक रीजन यहां रुकने का ये भी बन गया कि इधर संगठन संघ हमको अच्छा मिल गया ना। जो उमंग उत्साह में आत्मा है, आज तक हमने कभी कभी सेंटर जाते थे और ज्यादा लोगों से संग पता नहीं क्यों दूरियां ही रहती थी, अच्छा नहीं लगता था, और बहुत काफी पुराने लोग होते थे उधर पे, लेकिन वो आधा पाव उनका ग्रस्त में, जो बाबा ने आज कहा ना, ग्रस्ती बहुत बहानेबाज भी होते हैं, है ना, बहाना मारते हैं कि हम तो ग्रस्ती हैं। तो ये थी दोनों चीजों का बैलेंस नहीं था। तो संग भी हमारा अच्छा हो, चित्र हम जो देखें हमारे चित्र अच्छे हो, चित्र देखने तो हमारा चरित्र निर्माण होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, कहीं अभी उस दिन भाई जी ने सुनाया था ना, बायोस्कोप का प्रकोप बहुत भयानक हो गया है, सूक्ष्म हो गया है, रात रात नींद इस कारण से भी चली गई है लोगों की कि मोबाइल देखते हैं रात को, और खुद को ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कोई वो नहीं है, है ना, लेकिन है तो सूक्ष्म में। और ऐसा नहीं है कि परफेक्शन नहीं है, जैसे भाई जी ने उस समय बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनाया था कि नमक के पानी से नहाओगे तो घाव जहां रहेगा ना उधर वो दर्द होगा, जो हमारे अंदर वृत्तियां बुराइयां हैं वो तीर की जगह चुभेंगी। तो ये था चरित्र, लक्ष्य को भूल जाना। तो लक्ष्य हमेशा हमें याद रखना है, समय जो भी हो, जो भी परिस्थितियां हो, उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। और एक बार जब मर्जी व जन्म में आ गए तो क्या कोरोना, कौन सा वायरस, और आज तो देखो कि परमाणु बम इतने बड़े बड़े हैं जिसमें एक सेकंड में करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ जानी है, उससे इतना नहीं डर रहा जितना एक अणु से, एक कीटाणु से व्यक्ति डर रहा, परमाणु से नहीं डर रहा जो एक सेकंड में क्या करेगा, है ना। बहुत और देखो हो भी रहा है, वो तो धीरे धीरे कर रहा है ना, जो कीटाणु है वो धीरे धीरे काम कर रहा, वायरस धीरे धीरे कर रहा, लेकिन जो होगा आगे परमाणु बम से तो वो कितना होगा। तो ये अगला है कि दूसरे पॉइंट में जो था पहला, लक्ष्य को भूले हैं, एक तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म भिकारी, और दूसरे स्थूल भिकारी, है ना। जो भूलनाथ के भूले बच्चे, भिकारी बच्चे उनके देखें तो दूसरे पहले हैं जो लक्ष्य को भूले हुए हैं, दूसरे हैं स्थूल भिकारी। अभी भी जब हम बन गए बाबा के, सब जान लिया कि जो भी चीज प्राप्त हुई है वो कोई मतलब नहीं है, दुनिया में जो भी अच्छी से अच्छी चीजें प्राप्त हो जाए आपको, हमें अतीन्द्रिय सुख नहीं दे सकते, बिल्कुल गारंटी है। आप चाहे कितना भी आप कोई चीज प्राप्ति कर लो, बल्कि बंधन है, बोझिल है, वजन हेडेक लगती है, तो कोई भी स्थूल चीज तो सब ऐसा ही है। और जो कुछ है ना खाली कर दो, बिल्कुल एक दो जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ होने ही नहीं चाहिए, है ना। जो सब है तो बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, जितनी सारी चीजें हैं उतना बोझ है। तो स्थूल चीजें तो किसी से ना मांगनी है, ना संकल्प मात्र भी चिंतन करना कि ये हो, जो है ना बहुत है और मिलता रहेगा। बाबा ने कल की मूल्य में बहुत अच्छी बात बोली, लड़ाई झगड़ा क्या करना तुमको, है ना। ब्रह्मा ने कैसे छोड़ दिया एक सेकंड में, जो मिला जितना मिला ना आ गया। और एक रीजन ये था घर से निकलने का कि वो तो समय हुआ, बाद में कभी देखेंगे। तो दूसरे बच्चे जो सूक्ष्म है भिकारी, शक्तियां नहीं मांगेंगे कि हमारे लिए योग कर लो, है ना, कि हमारे लिए थोड़ा पुरुषार्थ कर लो। तो सूक्ष्म भिकारी भी नहीं होंगे कि हमारे लिए थोड़ा ज्ञान का चिंतन आप कर लो, करना हम ही पड़ेगा सारी चीजें। तो बातें तो बहुत सारी हैं, और अब ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी भी हो गई कि अब ज्ञान से भी उपराम हो गई, अब सिर्फ एक ही चीज खींचती है उनको, एक ही चीज, वो निगेटिव पॉइंट नहीं है, एक ही चीज खींचती है कि अब सिर्फ उनको अतीन्द्रिय सुख चाहिए, और उनको ऊपर की स्थिति खींचती है, हल्कापन वो ही चाहिए। और वो उनको उनका जो पुरुषार्थ हो गया तो वो एक ही हो गया, सिर्फ ज्ञान भी में बिजी रहना है, इसलिए कि ताकि माया के फेरे से बच जाए, माया के फेरे में ना आए। स्थूल में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, स्थूल उस दिन भाई जी ने बताया ना कि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, शरीर से मन की यात्रा। तो अब वही है, अंतर्मुखता की है ज्यादा। अभी हमने देखा कि विशाल भवन में जो पुराने भाई उधर रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पुरुषार्थी भाई हैं, बड़े बड़े प्लान उन्होंने बनाए कि साइलेंस में रहना है, संगठन में भी कैसे मिलके चलना है, आपसी में मतलब कैसे योग तपस्या, बोले 8 घंटे तो आप इधर ही रहते इसी रूम में, बोले बाबा के कमरे 4 धाम में तो करना है तुमको तपस्या, लेकिन एक धाम ये भी है अपना जहां आप रह रहे सो रहे, उधर भी एक। तो सारे लोगों ने मिलकर कैसे कैसे प्लान बनाए, और बोले अब समय विस्तार में नहीं जाने का है, अब सार समय अटने का हो गया है समय, और अब ना परचिंतन परदर्शन कौन क्या कर रहा है कौन कहाँ लगा है, इससे भी मुक्त होना है, क्योंकि आत्मा परचिंतन में देह में फंसी है, परचिंतन ही करेगी। तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, ये भूलानाथ नहीं बनना है, सिर्फ अंत समय आया है कि अंत मति सो गति, अंत में हमारी कैसी मति है, क्या हम सब सीरे से मुक्त हो चुके हैं, अपने देह से भी बार बार मुक्त होना है, और देह से मुक्त होने का एक ही उपाय है। उस दिन बाबा ने साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में संडे की बोला कि तपस्या, और इस शरीर को भी तपाना है। अब आत्मा उस सेवा ऑटोमेटिक होगी, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, संकल्प भी नहीं करना है क्या कैसे करना है, वो बाबा कराने वाला है, हम निमित्त हैं, है ना, वो करा लेगा इस शरीर को जैसे चलाना है। क्योंकि अगर अभी जीवन की कहानी अभी खुद की भी देखें स्वयं की, तो जहां थे वहाँ जो परिस्थितियां थी वो हमने निर्माण नहीं करी थी, जो हम कर रहे थे वो हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। यहाँ आए तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और स्थूल चीजों में तो अपनी मर्जी लगानी नहीं है, निसक्त बिल्कुल बिल्कुल। जितना तपा दो शरीर को, और उसका भान भी ना रहे, जो कर रहे हैं ना उसका भी भान ना रहे। एक ही यात्रा और एक ही लिफ्ट में सफर करते रहो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ड्रिल अंतर्मुखता, वाचाल जितना कम हो, रत्न ही निकालने, कल बाबा ने बोला रत्न निकालने, बस पत्थर नहीं निकालने चाहिए। और अब इधर पे आके जब संगठन में आते हैं तो तब महसूस होता है कि हम कहाँ कहाँ गलत थे। कभी कभी गलतियां बहुत दूर से महसूस होते हैं, बहुत जब हम दूर पहुंच जाते हैं, जब कोई हमें अगर अपनी गलती या एहसास दिलाता है तो उसको गिफ्ट दो, थैंक्स दो, ना कि मूर्छित मूर्छित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।
अब वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना, एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना, प्रभु गुणों से भर लो तुम अनमोल खजाना, दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना, ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी, शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी, तन लिया है।